તારીખ 16/8/1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 206 અને કળશ 144 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 198
કોઈ જરૂરત આત્મ પ્રાપ્તિ કે લીએ ज्ञान है उतना ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, ज्ञान है सो आत्मा है। ऐसा निश्चय करके, ऐसा निश्चय करने से में सदा ही रीति प्रति प्राप्त कर, ऐसा निश्चय पूर्वक ज्ञान में रुचि, ज्ञान मात्र में रुचि, ज्ञान मात्र में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। उतनी रुचि होगी, उतनी रुचि होगी कि परिणमन अभेद हो जाएगा, फिर विकल्प भी रहेगा नहीं आत्मा का। एक दफे निश्चय होना चाहिए, निश्चय का बहुत महत्व है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान वेदन अंश से निश्चय होने से, उसके पहले विज्ञान चलता है, वो सब बात उपेक्षित है। प्रथम तो स्वभाव का संस्कार उसी वक्त आत्मा में आ जाता है, हो जाता है, जो कभी नाश होता नहीं, वो सम्यक दर्शन का कारण हो गया वहां। और उस लक्ष्य से जो बल उत्पन्न हुआ, निश्चय बल, ज्ञान बल और पुरुषार्थ की जागृति, स्वसन्मुख ऐसा पुरुषार्थ की जो जागृति आई, वो भी आगे बढ़ करके सहानुभूति को प्राप्त कराएगा। जानते हूँ, रागते हूँ नहीं, वो भी ज्ञान है, बराबर सतत चालवो जोइए, निरंतर चालवो जोइए। वेद ज्ञान निरंतर चलने से प्रथम निश्चय होता है, और ऐसा वेद ज्ञान निरंतर चलने से स्वानुभव होता है, और फिर वेद ज्ञान निरंतर चलने से बार बार स्वानुभूति की पर्याय आने से ऊपर ऊपर के गुण स्थान में आरूढ़ होना होता है, ऊपर ऊपर का गुण स्थान का प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो 131 कलश आ गया, वेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एक लके चला, जहां तक पूर्ण नहीं हो वहां तक वेद ज्ञान का प्रक्रिया चलता है। यहाँ तो सरल कर दिया है, आत्मा वैसे कोई अगम अगोचर पदार्थ है ऐसा कहने में आता है, लेकिन सुगम सुगोचर पदार्थ भी है, बताने वाला सत्पुरुष की कृपा चाहिए और अपने पात्रता चाहिए। वैसे तो अगम अगोचर पदार्थ है, लेकिन सत्पुरुष की कृपा से सुगम सुगोचर भी है। अनपढ़ हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, ज्ञान है सो आत्मा है, तो आत्मा एकदम समीप हो गया, उसमें आत्मा एकदम समीप हो गया है? मंत्र है, महामंत्र तिरने के लिए महामंत्र है। और अन्य लोग कहते हैं कि भाई राम नाम का मंत्र है, राम राम नाम का मंत्र से समुद्र को तीर गए, ये आत्मा राम का मंत्र है, ये आत्म राम का मंत्र है। गुरुदेव राम का अर्थ भी ऐसा ही करते हैं, निज में रमेश हो राम कहिए, बस वही राम है। तो ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है, ज्ञान ज्ञान गोचर ही होता है, और अपना स्वरूप भी ज्ञान गोचर ही होता है। सुगा ने लिखते एक पत्र में कि मुझे तो मेरा स्वरूप ही गम्य हो रहा है, और कुछ मुझे गम्य नहीं होता है। अनुभव गम्य का क्या होता है? कि मेरा स्वरूप ही अनुभव गम्य मुझे होता है, दूसरा मुझे कुछ अनुभव गम्य होता ही नहीं, अनुभव गम्य हो भी नहीं सकता। ऐसा निश्चय करके, निश्चय करके ये करना करना की बात है, पैसा पड़ जाना वो बात नहीं है। ठीक है, वो बात बराबर है, आत्मा का मान निश्चय करने से रुचि होती है, प्रीति होती है। निश्चय करना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, तब उसका फायदा है, लाभ तो तब होगा। और पढ़ना भी निश्चय करने के हेतु से पढ़ना है, पढ़ने के हेतु से शास्त्र नहीं पढ़ना है। शास्त्र आज्ञा है उसको परिपालन करने के हेतु से वो पढ़ना है, शास्त्र आज्ञा होगी। आज्ञा किया ना, प्राप्त कर, तुम आत्म रुचि को प्राप्त कर। कोई ऐसा प्रश्न करे कि आत्म रुचि कैसे प्राप्त हो, आत्मा की रुचि कैसे जगे, कि जिस रुचि के अनुसार जो पुरुषार्थ चले उससे स्वानुभव होवे ही होवे। तो ज्ञान है सो आत्मा है, इतना अनुभवांश से निश्चय करने से ऐसी रुचि होती है। रुचि होने का कारण ये है कि सुख की तो जरूरत है, और सुख निधान, अनंत सुख निधान अंदर में अपना स्वरूप है, वो भाष्यमान हो जाता है। अनंत सुख भाष्यमान होने से सुख की अपेक्षित वृत्ति, सुख निधान के प्रति दौड़ने लगेगी, उसको कौन रोक सकता है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। हाँ, तो क्या है कि अपना ज्ञान के, ज्ञान का अनुभव प्रति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य शरीर के प्रति है। तो गर्मी लग रही है, गर्मी लग नहीं रही है, गर्मी का ज्ञान हो सकता है, लग सकती नहीं है। उसी वक्त ज्ञान को देखो ना, कि गर्मी का प्रवेश ज्ञान में होता है
नहीं होता,
देखो अपने ज्ञान को। नहीं दिखाई दे तो जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो कि क्या ज्ञान गर्म हुआ, ज्ञान को गर्मी लग सकती
नहीं
है। लोहा गर्म होता है, लकड़ा गर्म नहीं होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं साइंस में उसको। क्या लोहा है वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बिजली भी चलती है, गर्मी भी चल जाती है। लेकिन लकड़े में न बिजली होती है, ना आ सकती है न गर्मी आ सकती है। तो ये आत्मा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड है, गर्मी सर्दी उसमें आ सकता
नहीं
है, ऐसा पदार्थ है। ये अनुभव झूठा है, ये अनुभव झूठा है, पर दुखदायक भी है। जब ये लकड़ा है उसमें गर्मी नहीं आती, वैसे आत्मा में भी गर्मी नहीं आती, लेकिन आत्मा एक ज्ञानवंत चैतन्य पदार्थ होने से वो गर्मी को जान लेता है,
जानता है,
जानता है तो भूल करता है, जानने के वक्त अपने आप को नहीं जानता है इसलिए भूल करता है, अपने आप को संभालता नहीं है इसलिए भूल करता है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे ज्ञान मात्र शब्द लेने का कारण यही है कि ज्ञान मात्र में ही, अकेले ज्ञान में ही रुचि होती है। संभालना है, सावधानी करना है, ज्ञान मात्र में हूँ ऐसी सावधानी
करना है।
ज्ञान मात्र कह करके राग से भिन्न कर दिया, मात्र ज्ञान कह करके राग से भिन्न कर दिया, ऐसा करना है। ये विधि सूचक गाथा है, आत्मा को दर्शाते हैं कि आत्मा है सो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है सो कल्याण स्वरूप है। तीन पद लिया ने, सत्य कल्याण है, सत्य आत्मा है, सत्य कल्याण है, और उतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। अनुभव का स्थान वही है, अनुभव का विषय कोई दूसरा
नहीं
है। तीन बात है, इतना ही सत्य कल्याण है, जितना यह ज्ञान है, आत्म कल्याण चाहिए कि नहीं चाहिए? मनुष्य, सभी मनुष्य अपने अपने संप्रदाय में जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ क्यों जाते हैं? सिख गुरुद्वारा में जाएंगे, मुसलमान मस्जिद में जाएंगे, हिंदू मंदिर में जाएंगे, जैन जिनालय में जाएंगे, जैन मंदिर में जाएंगे, क्यों? आत्म कल्याण करना है, क्योंकि तो तेरा कल्याण कहाँ है? जितना यह ज्ञान है उतना ही आत्मा है, उतना ही कल्याण स्वरूप है, ज्ञान स्वयं कल्याण स्वरूप है। ज्ञान में, ज्ञान में कोई उपद्रव हो सकता नहीं है, निरुपद्रवी तत्व है। ज्ञान मात्र तत्व कैसा है? निरुपद्रवी, उसमें कोई उपाधि नहीं आ सकती है, निरुपाधिक तत्व है, शांत स्वरूप है। आचार्य महाराज तो कहते कि आत्मा शांत रस का सरोवर है, शांत रस का सरोवर है, उसमें जो तरंगे उठती है वो शांति की तरंगे उठती है। ऐसा शांत रस का एक सरोवर भीतर में है, उसमें तुम डुबकी लगाओ, तेरा ही स्वरूप है। इसलिए वो आत्मस्वरूप को दिखाने वाले हैं, इसलिए उसको मंगल कहा। आत्मा तो मंगल स्वरूप है ही, कल्याण स्वरूप है ही, लेकिन उसको दिखाने वाले को भी मंगल कहने में आता है। आप हमारे मंगल को करते हैं, ऐसा कहते हैं, हमारे आनंद मंगल को करने वाले आप हैं, ऐसा भक्ति तो वैसे ही करेंगे। इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है। देखो अपने ज्ञान को, निरुपद्रवी है कि नहीं है? ज्ञान सामान्य में तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, किसी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। जैसे आत्मा को निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ऐसे ज्ञान सामान्य को भी कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। अरे मति श्रुत का भेद वहां नहीं है, मति श्रुत अवधि मनी मन परय केवल का भेद भी वहां नहीं है, तो फिर दूसरी तो बात कहने की नहीं है। क्योंकि मति श्रुत को मति ज्ञानावरण की अपेक्षा लगता है, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञानावरण की अपेक्षा लगता है, केवल ज्ञान को केवल ज्ञानावरण की अपेक्षा लगता है। ये हटेगा तब पैदा होगा, ये तो अनादि अनंत है, सदा प्रकट रूप है। कैसा है? सदा प्रकट रूप है। 49 गाथा है ना, देखो 49 गाथा में वो बात लिया है। चैतन्य चेतना गुण वाला आत्मा है, ऐसा लिया ना, चेतना गुण वाला। हाँ, रूह मगंधम कैसा चेतना गुण, चेतना गुण वाला है, वो चेतना गुण का व्याख्या क्या है? सबसे आखिर का पैराग्राफ, टीका के आखिर का पैराग्राफ लेना है। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। क्या बोले? सदा अंतरंग में, बाह्यंग में नहीं, अंतरंग में प्रकाशमान है, वेदन गोचर है। चेतना गुण कैसा है? अपने अनुभव में आने वाला है। अनुभव पर्याय में होता है, द्रव्य में होता है, पर्याय में होता है, प्रकाशमान है, अंतरंग मान अनुभव में आने वाला ही है और सदा ही प्रकाशमान है। इसलिए जीव चेतना गुण वाला है, इस कारण से वो चेतना गुण वाला है कि वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। शुद्ध चित्ति स्वरूप कांति, अचिंत्य द्रव्य स्वभाव ने शुद्ध चित्ति स्वरूप कांति परम प्रगट थे ने अचिंत्य करे छे। 833 में लीधु है, તે જ છે એનો પ્રકાશમાન છે એનું
એ જ છે.
यह चेतना गुण समस्त झगड़ा का नाश करने वाला है. आत्मा ऐसा है फैसा है, वो झगड़ा है सब मिट जाता है चेतना गुण से. चेतना गुण पकड़ में आया है, बात खत्म. और चेतना गुण कैसे पकड़ने में आता है कि जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है. जिसने भेद ज्ञान किया उसको चेतना गुण का पता लगा, भेद ज्ञान नहीं किया उसको पता लगता
नहीं है.
वो तर्क वितर्क करेगा. कहते हैं कि इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है. कैसे कि हे भव्य जीव, तेरा आत्म कल्याण तेरे से बिल्कुल दूर नहीं है. क्या
दूर नहीं है?
तेरा आत्म कल्याण तेरे से बिल्कुल दूर
नहीं है,
क्योंकि तेरा ज्ञान है वही तेरा आत्मा है. तुझे कल्याण करने के लिए कहीं भी इधर उधर जाने का सवाल
नहीं
होता. ज्ञान है वही अपना अपना स्वरूप है, वही कल्याण स्वरूप है. ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही, ज्ञान मात्र में सावधान हो करके निश्चय पूर्वक सावधानी होगी. बिना निश्चय सावधानी होती नहीं है. किसमें सावधानी करें? जिसका निर्धार न हो, जिसकी पहचान न हो, जिसका निश्चय नहीं हो, जो ज्ञान में झलकता न हो, दिखता न हो, तो किसमें सावधानी करेगा? ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही, ज्ञान मात्र में सावधानी करने से ही सदा ही संतोष को प्राप्त कर, अनुभव की दशा तुझे प्राप्त हो जाएगी. तुम संतुष्ट हो जाएगा. संतुष्ट हो जाए, जो उसको संतोष होता है वो फिर इधर उधर धाव धामा
नहीं
करता, उदंडबाजी नहीं करता. जिसको संतोष हो गया, बार भी पैसा कमाने में जिसको संतोष हो गया, अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर उधर उधर फिर परिश्रम करने को जाएगा
नहीं.
संतुष्ट हो गया कि मेरा सर्वस्व मुझे मिल गया, परम कल्याण स्वरूप मेरा ज्ञान, परम वही मेरा आत्मा, उसमें मेरी सावधानी हो करके मैं संतुष्ट हो गया. मुझे कहीं भी किसी भी दूसरे पदार्थ के लिए आकुलता करने की आवश्यकता
नहीं
है, कोई जरूरत नहीं.
कृतकृत
हो गया. और तीसरा पद लेते हैं कि इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है. ये सत्य अनुभव है. क्या
सत्य अनुभव?
ज्ञान अपना स्वयं का अनुभव करे वही सत्य अनुभव है. पर उतना ही अनुभव करने योग्य है. इसको छोड़ करके जो अनुभव करता है वो झूठ का अनुभव करता है. बस ज्ञान मात्र ही अनुभव करने योग्य है. जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है. इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है. बस कितना संक्षेप कर दिया यह आराधना का विषय. इतना संक्षेप वाला है यह ज्ञान है, उतना इसका अनुभव करो. बस बस बात, सब बात उसमें तृप्ति हो जाएगी तुमको. क्या ऐसा निश्चय करके, ऐसा निश्चय करके सावधान होगा ज्ञान मात्र में, तो ज्ञान मात्र से ही या ज्ञान मात्र की सावधानी से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त करेगा तुमको. तुमको तृप्त तृप्त दशा हो जाएगी. अतृप्ति में आकुलता है, यहाँ तो तृप्ति आ जाएगी. संतुष्ट हो जाएगा और तृप्ति भी आ जाएगी. इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में तृप्त. तुम आत्मा में रत हुआ, लीन हुआ, आत्मा में संतुष्ट हुआ, आत्मा से तृप्त हुआ, ऐसे तुझको वचन अगोचर सुख की प्राप्ति होगी, अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। जैसा सिद्ध परमात्मा को सुख है उसी जाति का सुख मिलेगा, अरिहंत को और सिद्ध को जैसा सुख है ऐसा सुख की प्राप्ति होगी। कितना लाभ है, प्रारंभ में कितना लाभ है, ये धर्म का प्रारंभ सुख से होता है। क्या वो बाहर का कोई सुख नहीं है, अंदर का सुख है, आत्मा का सुख है, निराकुल सुख की प्राप्ति धर्म का प्रारंभ ही है। उसी को ही आत्मानुभव कहते हैं, उसी को आत्म धर्म कहते हैं, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। आत्मा में जो अनंत शांति भरी है वो आत्मा में रत होने से, आत्मा में लीन होने से वो प्रकट हो जाती है। तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं में देखेगा या भोगेगा। देखेगा मतलब भोगेगा। जिस क्षण में तुमको सुख होगा वो क्षण कोई दूर वाली नहीं है। लीन हुआ, संतुष्ट हुआ, रत हुआ, निश्चय किया, तुरंत तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए कृपालु देव ने निश्चय को सुधारस बोले हैं। क्या बोले?
सुधारस
नाम दिया है उसको, सुधा का अमृत का रस बोले हैं। वास्तव में तो अनुभव में जो निश्चय होगा उसमें से सुधारस आता है, लेकिन बीज ज्ञान को भी सुधारस बोले हैं। नित्य नित्य सुख मिलेगा। हाँ, उत्तम ने सर्वोत्कृष्ट जो सिद्ध भगवान को होता है वैसा, एक डिग्री का फर्क है। सिद्ध भगवान को अनंत होता है, यहाँ कम मात्रा में होता है, लेकिन उसी जाति का होता है। एक ही सुख प्राप्ति का यह उपाय है, ज्ञान मात्र में सावधानी करके लीन होने से सुख प्राप्त होता है। दूसरा किसी प्रकार से आत्मा को आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होता है। जो सुख नहीं है, कल्पित सुख, जो दुख है जिसमें सुख की कल्पना जगत का जीव करता है, उसके पीछे वो कितना मजदूरी, कितना परिश्रम, कितना समय व्यतीत करता है देख लीजिए। हाँ, तो पूरा जीवन इसके पीछे खर्च कर डालता है, पूरा का पूरा जीवन।
सुख मिलता नहीं,
फिर भी सुख मिलता
नहीं
है। जब कल्पित सुख के लिए पूरा जीवन समर्पित करता है तो सच्चा सुख के लिए पूरा जीवन क्यों नहीं समर्पित करेगा?
सही बात।
कल्पित सुख के लिए अनंत काल से तू तेरा जीवन का खर्च करता है, समय शक्ति को बर्बाद करता है, तो ये सच्चा सुख की, अनंत सुख की खान है, उसका अवलंबन के लिए तुमको क्या करना चाहिए? जो भी करना चाहिए वो करने को तैयार हूं, ऐसी मानसिक भूमिका में अभिप्राय की तैयारी हो जानी चाहिए। फिर कोई विटमना नहीं है, जहां तक ऐसी तैयारी नहीं होती है वहां तक सब गड़बड़ है। और ये रोकड़ा सुख है, आचार्य महाराज ने कैसी टीका लिखी है कि उत्तम सुख की तो तुमको प्राप्ति होगी। क्या उत्तम सुख की तो सदा ही उत्तम सौख्य हो, तो उत्तम सुख की तो प्राप्ति होगी, लेकिन उसी क्षण होगी। अगले भाव में सुख, धर्म यहाँ करेगा तो दूसरे भाव में सुख मिलेगा, ऐसा उधारी का व्यापार नहीं है। जिनेश्वर देव का धर्म रोकड़ा है, उधार नहीं है, उसी वक्त सुख मिलता है। धर्म प्रकट हुआ, सुख के साथ प्रकट हुआ, शांति के साथ प्रकट होता है, सब उपाधि और आकुलता मिट जाती है। दूसरों से मत पूछ, तुम दूसरे को पूछने को जा मत जा, इतना ही तुझे करने तेरे में करने का है, दूसरा दूसरे से पूछ करके सुख इधर के सुख मिलेगा कहाँ मिलेगा, कोई पूछने की तुरे जरूरत
नहीं है।
यानी जिसको सुख होता है उसको किसी को सुख प्राप्ति के लिए कहीं भी पूछना पड़ता नहीं है कि मेरे मुझे सुख कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, कहाँ जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, महाविद्य में जाओ तो कल्याण होगा, समय शिखर में जाओ तो कल्याण होगा, शत्रुंजय में जाओ तो कल्याण होगा कि नहीं, तेरा कल्याण तेरे में है। उसमें कोई फेरफार नहीं है, नियम से गारंटेड होगा होगा और होगा ही, किसी को होगा किसी को नहीं होगा, कोई फेल होगा कोई नहीं होगा, ऐसी बात भी
नहीं है।
ज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी मार्ग दिखाते हैं उसी पर चलने का जो पुरुषार्थ करता है उसको अवश्य अवश्य सफलता मिलती ही है, गारंटेड है, नहीं मिले ऐसी कोई बात
नहीं
है। उनको आचार्य देव अपना अनुभव को गारंटी के साथ दिखाते हैं, तुम्हें ये लाभ होगा होगा और होगा। हम लोग उतने भाग्यशाली हैं कि सुख प्राप्ति के लिए हमको ये बात समझ में मिल सकती है। ऐसे अरबों मनुष्य है, करोड़ों मनुष्य के जिसको ये बात संसार में दुख के अनेक प्रसंग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और किसी को भी दुख मंजूर नहीं है, कोई भी कारण से हमें दुख नहीं चाहिए, लेकिन करें क्या, दुख मिटता नहीं और सुख प्राप्त होता नहीं, यही इसकी समस्या का समाधान है। इधर ये प्रॉब्लम मानव जाति का या सभी जीव का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है ये, और इसका समाधान है। पर कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, क्या ऐसे सुख प्राप्ति के लिए सुख को दिखाने वाले निर्ग्रंथ आचार्य गुरु को कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ऐसे ही खड़े हैं कि देख मेरे तिल तो समात्र परिग्रह तो है नहीं, पर मैं कोई एडवाइस की फीस भी लेता नहीं हूं। बाहर में तो एक लड़के को बच्चे को ट्यूशन रखे तो फीस देनी पड़ती है, ये निष्प्रह है, कुछ लेना देना नहीं है। पर कैसी सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम से उत्तम निराकुल सुख की हमेश के लिए प्राप्ति हो जाती है, खुद भगवान बन जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि कौन सी हो सकती है, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसा एक पवित्र दशा है कि जिसके इसके रिद्धि सिद्धि नहीं होगी तो किसकी होगी, तो अरिहंत पद के लिए कृपाणु जी ने लिखा है, क्योंकि आर्यन भगवान को सर्व रिद्धि सिद्धि होती है क्या, तो क्या ऐसे महान पवित्र दशा वाले को सब रिद्धि सिद्धि नहीं होगी, तो रिद्धि सिद्धि का दूसरा उससे स्थान होगा भी कहां से जगत में, तो हो सकता नहीं है। और वो भी कुछ दिए बिना कुछ लिए बिना, लेना देना कुछ नहीं
है,
हाँ देना पड़ता है अपना दोस्त को निकाल करके, निकाल देना है, क्या देना कि दोस्त को
निकाल देना,
वो देना निकाल देना बस, और कुछ देना नहीं है, वो प्रकृति दोष होता है उनको निकाल देना, बाकी तो छोटे मोटे निकल जाए, प्रकृति दोष को निकालना मुश्किल पड़ता है, वो समर्पण करना पड़ता है। ख्याल में नहीं आता इसलिए जल्दी निकलता भी नहीं है, ख्याल में आता तो निकल जाता, ख्याल में नहीं आता इसलिए जल्दी
नहीं
निकलता है, ख्याल में लेने का प्रयास करे तो ख्याल में आता है, ख्याल में लेने का प्रयास नहीं करे तो ख्याल में नहीं आता है, उतनी सी बात है। खुद ही आंख आड़ा कान कर दे, क्या कान को इधर तो नहीं कर सकते, लेकिन देखा अनदेखा करना, इसका मतलब कि आंख आड़ा कान कर दिया। कान को यहाँ से निकाल करके इधर रख सकते हैं चश्मा के जगह पे या नहीं? फिर भी जो अपने दोष से होने वाले नुकसान के प्रति सावधान या दरकार नहीं करता है तो आंख आड़ा कान करता है। वो अपने दोष को देखना चाहता नहीं है, पहले तो उसको वो है तो उसको अपना दोष देखना नहीं है। अभिप्राय दोष करने का है ना, अनादि से उल्टा अभिप्राय में क्या है? गुण करने का अभिप्राय नहीं है, दोष करने का अभिप्राय है। तो अपना दोष देखना नहीं चाहता, अपना दोष सुनना भी नहीं चाहता, कुछ सुनावे तो बचाव करने लग जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा है। छेद मात्र में वो खुद ही देखना नहीं चाहता है तो दिखेगा कहाँ से, खुद सुनना नहीं चाहता है तो उसको दिखेगा कहाँ से? ये भी प्रकृति दोष है। अरे सब पूरा पूरा कचरा भरा है इसमें, प्रकृति दोष में पूरा कचरा भरा है। ऐसे किसी को गुस्सा होने की प्रकृति होती है, किसी को लोभ की प्रकृति होती है, किसी को मायाचारी झूठ बोलने की प्रकृति होती है, बिना मतलब बात बात में झूठ बोल देता है। अच्छा इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसको रूठ जाने की प्रकृति होती है, इसको भावुकता की प्रकृति होती है, होती है ना, अनेक प्रकार की प्रकृति होती है। ऐसे उनका कर्म प्रकृति का बंधन भी ऐसा है और वो उसका ही अनुसरण करता है। स्वरूप में सावधानी नहीं होने से ऐसा अनुसरण उसको हो जाता है। हाँ, खास प्रकार के परिणमन करने की परिस्थिति, उसको प्रकृति स्वभाव कहने में तो बोलेंगे भाई मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव है तो तेरा स्वरूप है तो मिटाने लायक है, मिटने लायक है, उतनी बात है। पहले से हम ऐसा ऐसा ले लेते हैं कि मेरा स्वभाव है मिटेगा नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव है नहीं मिटेगा, तो पहले से ऐसा ले लेगा, ये गलत है। प्रकृति दोष प्रकृति स्वभाव मिट सकता है, पुरुषार्थ करने से प्रयास करने से अवश्य अवश्य मिट सकता है, नहीं मिटे ऐसी बात नहीं है। आत्मा का ज्ञान उसको खत्म करने के लिए पूरा ताकत वाला है, क्षमता वाला है, सक्षम है वो। माया नहीं प्रकृति से, वो माया प्रकृति हो गई, भाई प्राण ने प्रकृति हारे जाए वही का जाए है। परिणमन में इतना दृढ़ हो गया है तो उसको खुद को लगता है कि मेरी प्रकृति मिटेगी नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो मान रखा है प्रकृति मिट सकती है। हाँ बिल्कुल है? केंद्र में मतलब उसको तो स्पर्श करता ही नहीं है, प्रकृति जो है उनको तो स्पर्श करता ही नहीं है, वो वैसी के वैसी रहती है और ऊपर ऊपर से सब कर लेता है। ऐसी बात होती है, वो क्या है, एक फोड़ा जैसी बात है, कोई फोड़ा को स्पर्श करे तो दर्द होने लगता है, तो जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को मिटाने के लिए कोई उसको बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो दर्द होगा पहला, लेकिन जिसने निर्णय किया कि कितना भी दर्द है ये रोग मुझको मिटाना ही है, फिर मिटना आसान है, फिर मिटना आसान है। देखो पूर्णता के लक्ष्य में क्या होता है, जिसको पूर्ण शुद्धि करना है उसको प्रकृति दोष रखना है क्या? तो प्रकृति दोष पर पहला घाव पड़ता है उसको तो जोर से, प्रकृति कमजोर हो जाती है उसकी, पर प्रकृति उसकी कमजोर हो जाती है। ऐसे बहुत से जीव मुमुक्षु दशा में हो जाते हैं कि इसके परिचय वालों को लगता है कि ये सारा बदल गया है। क्या
बदल गया?
पहला ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो गया है। दूसरे को मालूम पड़ जाता है कि ये बदल गया पूरा जी। और प्रकृति दोष वैसा का वैसा रहता है तो कितना भी धार्मिक क्रिया में शामिल होता है तो धार्मिक परिश्रम करना दिखने में आता है, फिर बोलेगा कुछ भी करता है लेकिन वैसा का वैसा है। तो पत्थर पर पानी लगाओ, पत्थर को कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या बोलेगा, वो करता है बहुत लेकिन पत्थर पर सब पानी है, ऐसा ही बोलेगा। इसका मतलब कि बिल्कुल उसकी प्रकृति गली नहीं है, शिथिल भी नहीं हुई है, ढीली भी नहीं हुई है। वो बात हुआ मुख्य चार है, फिर इसके पेटे में सब कुछ बढ़ो। हाँ हाँ, वो माया है, मान भी है माया भी है दोनों है। वो बचाव करता है ना, उसमें माया जगह माया की मुख्यता ज्यादा है। मान वसात माया होती है, प्रवृत्ति माया की है लेकिन मान वसात होती है, मान वसात माया है। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में संतुष्ट होना और उसी से तृप्त होना, वो परम ध्यान है। ऐसा होना वो परम ध्यान है। क्या है इसको ध्यान नहीं बोला, वो परम ध्यान है, वही धर्म ध्यान है। और उसी की डिग्री आगे बढ़ने से वही शुक्ल ध्यान है। चार प्रकार का ध्यान में आर्द्र रौद्र तो मैला ध्यान है, ये धर्म ध्यान है, परम ध्यान है। परम मैंने परम लगाने परम ध्यान में ध्यानान्वित होने वाला परम ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान है। परम मैंने उत्कृष्ट ध्यान है, उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है, भविष्य का आनंद का नहीं, वर्तमान में ही आनंद का अनुभव होता है। ऐसा ध्यान होने से आनंद का अनुभव होता है। सब उपाधियां छूट जाती हैं, मिट जाती हैं। कोई आदि व्याधि उपाधि स्पर्श कर सकती नहीं है, जगत के कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकते हैं। दुख का प्रकार एक है और सब दुख का प्रकार मिटाने के लिए एक मास्टर के हाथ में आ गई, ये मास्टर की है, सब ताला खुल जाता है, एक भी दुख नहीं रहेगा। इसका मूल्य कितना, एक भी दुख नहीं लगे, एक भी दुख नहीं होवे, इसका मूल्य कितना अमूल्य है, उसका वो मूल्य कर सकते हैं नहीं है। किससे करे मूल्य, करे तो भी कोई कौन सा ऐसा पदार्थ है कि इसका मूल्यांकन इससे करे, इसका ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। बस वही, बस वही मास्टर की है, त्रिकाली में अहम पड़ा कर देना। हाँ बस तो उनकी तो धुन ही वही थी, वही धुन में वो रहते थे तो वही बात करते थे। देखेगा देखेगा, हाँ दृक्षसी देखेगा, देखना मैंने अनुभव करना, अनुभव से देखेगा। हाँ ठीक है, वो तो एक अर्थ में हो सकता है, क्या हो सकता है, देखना का अर्थ भी अनुभव हो सकता है, दोनों में। उसमें भविष्य लिया अथवा एवं तव नित्यमेव आत्मरतस्य आत्मसंतुष्टस्य आत्मतृप्तस्य च वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति, वहाँ भविष्यति लिया। तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्षसि, तो उसको उसी वक्त देखेगा, मैंने अनुभव करेगा, होगा उसको तुम देखेगा, जो होगा उसको तुम देखेगा, जो होगा इसका अनुभव करके देखेगा। अकेले देखने में अनुभव नहीं है, अनुभव में देखना साथ में है, जानने में वेदन नहीं है, वेदन में जानना साथ में है। हाँ, वेदन अनुभव की तो बात चली है, कथा ही अनुभव की है। बराबर पता चलता है, नहीं क्यों चलता है, अगर पता नहीं चलता तो उसकी बात आती कैसे, इतनी लंबी चौड़ी बात कैसे आती। पूरा निर्जरा अधिकार सम्यक दृष्टि के लिए है, समर अधिकार भी सम्यक दृष्टि के लिए है। अच्छा, हमारा दोनों बात साथ में लेते हैं, क्योंकि सामने वो मिथ्या दृष्टि है तो उसको कैसे होगा वो शैली अपनाते हैं, यानी को ऐसे होता है ऐसा करके लेते हैं, विधि साथ में ले लेते हैं, कार्य पद्धति को बता देते हैं। दुख छूट जाता है, सुख हो जाता है और पता नहीं चलता है, क्या बात है, किसको दुख मिटा, किसको सुख हुआ। ज्ञानी तो कहते हैं कि जैसे सूरज है तो छावड़ी से ढंका हुआ रहता है, सूरज को ढकने के लिए छावड़ी लगा दो, छावड़ी मतलब क्या समझते हैं, छावड़ी को बोलते हैं, हाँ लकड़ी का जो इतना छोटा सा होता है ना, इसमें वो सब्जी वगैरह लेते हैं, तो थोड़ा 2 किलो 1 किलो उसमें वो टोकरी, छोटी सी टोकरी, उसमें वो टमाटर रख दो या उसमें कोई टिंडोरा रख दो, करेला रख दो, क्या सूरज इसे ढंक सकता है, ऐसे ज्ञानी छिपा रह सकता नहीं है, ज्ञानी की नजर में ज्ञानी छिपा रह सकता नहीं है, सूरज छावड़े से ढंका हुआ नहीं रहता। हाँ, मुमुक्षु के नेत्र भी ज्ञानी को पहचान लेते हैं, वो भी है, और जो पहचान लेते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं, उतना लाभ है उसको, पहचानने का लाभ है। बाहर में तो जो जवेरात को पहचानता है वो जवेरात की खरीदी नहीं भी कर सकते, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो पहचान वाले की खरीदी हो जाती है। उसको मिल जाता है, ऐसी बात है। दूसरा कोई ज्ञानी होने का रास्ता भी नहीं है, एक ही रास्ता है कि ज्ञान, क्यों इसलिए तो बोला दूसरा मत को खोज, एक सत्पुरुष को खोज, ऐसा क्यों बोला, कि इसके अलावा ज्ञानी होने का कोई रास्ता नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी नहीं हुए हैं, शास्त्र कितना भी पढ़े, उपवास कितना भी करे, कोई भी क्रिया करे, ज्ञान ज्ञान गुणम बिना प्राप्तम क्षमन्ते नहीं, ज्ञान से ही प्राप्ति होती है, उसमें पहले सत्पुरुष का ज्ञानी का ज्ञान होता है, फिर आत्मा का होता है, इसके सिवा कोई ज्ञानी होने का, ये तो 194वां पत्र लिखा है, सभी शास्त्रों का बोध लक्ष्य यही है, ऐसा करके लिखा है, और भूतकाल में वर्तमान में और भविष्य में जो भी ज्ञानी हुए है वो ऐसे ही हुए है, इसके अलावा दूसरे प्रकार से हुए नहीं है। ये बात एक दफे चौट जाए ना तो फिर दूसरा दूसरा रास्ता उसका ढूंढना बंद हो जाए, एक दफे ये बात चौट जानी चाहिए बस। तृप्त होना ही परम ध्यान है, उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है, और थोड़ी ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्तमान में आनंद होता है और भविष्य में भी लंबा भविष्य नहीं है इसका, थोड़ा काल में अल्प काल में, अनंत काल में बहुत अल्प काल है, साधक दशा का समय कितना, असंख्य समय, अनंत समय नहीं है, असंख्य समय है, मर्यादित समय है। थोड़े समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है, खुद ही भगवान बन जाता है, ऐसे करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है। पुरुष मैंने आत्मा, पुरुष मैंने आत्मा। जो पुरुषार्थ को करता है उसी को पुरुष कहने में आता है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है। मैंने आत्मा में लीन होने वाला, संतुष्ट होने वाला, तृप्त होने वाला जानता है। दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। तर्क वितर्क करने वाला, विचार करने वाला, अनुमान करने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला, इसका प्रवेश नहीं है। जो सुख को अनुभव करता है वही जानता है कि सुख कैसा, क्योंकि सुख अनुभव की चीज है। सुख कोई जानने फानने की चीज नहीं है, वो तो अनुभव करने की चीज है। जो अनुभव करता है वो जानता है, और जो नहीं अनुभव करता है उसका तो ये सुख के विषय में प्रवेश भी नहीं है। कृपाणु देव ने भक्ति का मार्ग उत्कृष्ट किया, इसका कारण वो है कि मोक्ष मार्ग वेदन प्रधान है। वेदन से तो निश्चय होता है, तो वेदना में आना वो भक्ति का मुख्य प्रकार है। क्या पहले से ही वो फीलिंग में आ जाता है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, सत्पुरुष के प्रति जो भक्ति है, उसमें भावना प्रधानता, लागणी प्रधानता वो पहले आता है। इसलिए वो लाइन को अनुसरण करने को बोला है, यही कारण है इसका। दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है, दूसरा वो प्रवेश नहीं कर सकता उसमें। अब ज्ञानानुभव की महिमा का, ऐसा आत्मानुभव कहो या ज्ञानानुभव कहो, और आगामी गाथा के सूचना का काव्य कहते हैं। अभी जो विषय चलेगा उसका उद्घाटन भी यही कलश में, यही श्लोक में करेंगे। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। देखो क्या 144 में है ना, 144 कलश भी ऐसा है और गाथा भी ऐसी है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन मात्र चिंता मणिश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मया विधत्ते नानी किम अनश्य परिग्रहेण। नानी दूसरी बात का परिग्रह क्यों करे दूसरी चीज का। जिसको अपना सर्व स्वरूप सर्वस्व रूप में परिग्रहित कर लिया, क्या ग्रहण किया, कैसे किया, श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से, पुरुषार्थ से और सुख की तृप्ति से परिग्रहित कर लिया। दूसरी बात का परिग्रह, दूसरे पदार्थ का परिग्रह क्यों करेगा, कि उसको दूसरे में कोई रस आएगा नहीं। चिंतामणि रत्न, ये चिंतामणि रत्न है। अचिंत्य स्वयमेव देव, आत्मा खुद ही चिंतामणि रत्न है। वो तो कहेंगे या चिन्ह मात्र चिंतामणि, कैसा बोला, चिन्ह मात्र चिंतामणि, वो भी उपमा अधूरी पड़ती है। क्या वो भी उपमा अधूरी पड़ती है, क्यों, कि चिंतामणि जिसके हाथ में हुए उसको चिंतन करे तो वस्तु मिले, पर इधर तो बिना चिंतन किए सहज ही अपना अनुभव चालू रह जाता है। इसलिए वो भी छोटी पड़ती है, ऐसी बात है। यहाँ तो आत्मा का चिंतन भी नहीं करना पड़ता, स्मरण भी नहीं करना पड़ता, क्यों, कि विस्मरण हो गए उसका स्मरण करे। जब विस्मरण ही नहीं होता है तो स्मरण करने की आवश्यकता कहां रही, कि कहीं भी नहीं है। ऐसा आत्मा स्वयं देव है, देवाधिदेव स्वयं है, उसका मूल्यांकन करने के लिए ये बात है।